वरधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय माधव कुंज विहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजनरंजन यशोदानंदन व्रजजनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी या राधा माधव कुंज विहारी जय जय राधा माधव कुंज विहारी जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Giridhare Radha, Giridhare Radha. Jai Jai Jagannath, Jai Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Nektai Gaura Haribol, 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 Haribol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam Sato Jayamudhirayet Nascha Praesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtike. Srimad Bhagavatam, Skanda 9, Adhyaya 18, Shlok Sankhya 25. Durmana Bhagavan Kavayaha Paurohityam Vigrahyam Suvan Vrittim Cha Kapotim Duhitra Saha Yayo Purat Durmana Bhagavan Kavya. Durmana Bhagavan Kavya. Paurohityam Vigarhyayan. Paurohityam Vigarhyayan. Tuvan. Tuvan Vrittim Chakapotim सुवृत्तिं च कापोतीम् दुहित्रासययो पुरात् दुहित्रासययो पुरात् दुर्मना भगवान् काव्यः वैरोहित्यं विगर्हयन् सुवन्वृत्तं च कापोतिम् दुहित्रासययो पुरात् दुर्मना भगवान् काव्यः कापोतीम् दुहित्रासययो पुरात् दुर्मना भगवान् काव्यम् विगर्हयन् सुवन्वृत्तिं च कापोतीम् दुहित्रासययो पुरात् दुर्मना भगवान् काव्यौरोहित्यं विगर्हयन् संवृत्तिं च कापोतीं द्वित्रासाययो पुरात् दुर्मना भगवान् काव्य ौरोहित्यं विगर्हयन् सुवन्वृत्तिं च कापोतिम् दुहित्रासययो पुरात् माताजि दुर्मना भगवान् काव्यः ौरोहित्यं विगर्हयन् पोतिम् दुर्मना अत्यंत अप्रसन्न होकर भगवान अत्यंत शक्तिशाली काव्यः शुक्राचार्य ने पौरोहित्यम पुरोहित कर्म को विगर्हयन धिक्कारते हुए सुवन प्रशंसा करते हुए वृत्तिम पेशा को च तथा कापोतिम खेत से उत्पन्न केते अन्न बीनने के दुहित्रा अपनी पुत्री समेत सह वह शुक्राचार्य ययो गया पुरात अपने आवास से अनुवाद और तात्पर्य ज्वाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद जब शुक्राचार्य ने देवयानी के साथ घटी घटना सुनी तो वे मन से अत्यंत दुखी हुए पुरोहिती वृत्ति को धिक्कारते एवं उच्च वृत्ति खेत से अन्न बीनने की प्रशंसा करते हुए उन्होंने पुत्री सहित अपना घर छोड़ दिया। तात्पर्य, जब ब्राह्मण कापोत अर्थात कबूतर की वृत्ति ग्रहण करता है तो वह खेत से अन्न बीन कर जीवन निर्वाह करता है, यह ऊंचा वृत्ति कहलाती है। जो ब्राह्मण उच्च वृत्ति अपनाता है वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वह भगवान की कृपा पर संपूर्ण निर्भर रहता है और किसी से कुछ नहीं मांगता। यद्यपि ब्राह्मण या सन्यासी को भिक्षा मांगने की अनुमति प्राप्त है, किंतु यदि इसे वह बच सके और अपने उदर भरण के लिए भगवान की कृपा पर निर्भर रहें तो वह अच्छा माना जाता है। शुक्राचार्य अत्यंत दुखी थे, क्योंकि अपनी पुत्री द्वारा शिकायत किए जाने से उन्हें अपना शिष्य के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि उन्होंने पौरोहिती वृत्ति स्वीकार कर रखी थी। शुक्राचार्य मन से इस वृत्ति को पसंद नहीं करते थे, किंतु चूंकि उन्होंने इसे स्वीकार कर रखा था, अतएव अनिच्छित रूप से उन्हें अपने शिष्य के पास अपनी पुत्री की शिकायत का निपटारा करने के लिए जाना पड़ रहा था। ओम ज्ञात विरांदस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप प्रदामयहं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं जीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणलिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकर्णा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सप्तकांचन गौरांगिराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये प्रसंग चल रहा है शर्मिष्ठा और देवयानी। देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री है और शर्मिष्ठा और देवयानी के बीच में वाद विवाद हो गया था, क्योंकि एक दूसरे के कपड़े पहन लिए थे। तो सबसे पहला देवयानी ने शर्मिष्ठा को बहुत डांटी। जब शर्मिष्ठा ये सह कर पाई तो शर्मिष्ठा ने देवयानी को कहा, जानते नहीं हो तुम लोग कौन हो, तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण होने के नाते तुम भिखारी लोग हो, भिखारी होने के नाते आप कौवे के बराबर हो, क्योंकि कौवा जो है वो इंतजार करता है कब मालिक घर का मालिक थोड़ा उच्चिष्ट मेरे लिए छोड़ेगा। तो इस प्रकार कौवे के रूप में तुलना किया और शर्मिष्ठा ने क्या किया, देवयानी को अपने कपड़े निकाल के उनको कपड़े देवयानी कपड़े निकाल के उन्होंने कुएं में फेंक दिया। तो तब राजा ययाति आए और देवयानी और राजा ययाति के बीच में संवाद हमने सुना, किस प्रकार उन्होंने कहा कि दैववश विधाता का विधि है, ये कर्म के अनुसार इस प्रकार हो रहा है, तो इसलिए मेरे कर्म में तो ब्राह्मण पति को प्राप्त करने का कोई कोई मौका ही नहीं है, क्योंकि मुझे शाप मिला है, कचा से शाप मिला था, इसलिए ययाति राजा आप ही एकमात्र हो जो मुझे स्वीकार कीजिए। तो ययाति राजा, भले ही उनको मालूम था कि मैं क्षत्रिय हूँ, देवयानी ब्राह्मण की कन्या है, तो विवाह करना धर्म के विरुद्ध है, लेकिन ये दैव संयोग से हुआ है इसलिए मैं स्वीकार कर लेता हूँ करके उन्होंने स्वीकार भी किया था। खास करके वो देवयानी को देख के आसक्त भी हो गया था, तो स्वीकार हो गया। फिर तुरंत वो गई, कौन, देवयानी गई अपने पिता के पास, शिकायत लेके गई पिताजी के पास। तो ये शिकायत लेके जाना ये स्वभाव है, बद्ध जी का स्वभाव है, कंप्लेंट। अभी देवयानी का विवाह का तैयार हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, यानी उनको ये दैववश उनको ययाति जो महान राजा है उनको पति के रूप में उनको प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी जो दुश्मनी थी इसके साथ, शर्मिष्ठा के साथ, वो नहीं गई। जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये बहुत महान गुण होता है, भूल जाना और क्षमा करना और उसको भूल जाना। ये नहीं कि मैंने क्षमा किया था तुमको याद है खाली क्षमा करना ही महत्वपूर्ण गुण नहीं है, क्षमा करके मैंने क्षमा किया करके उस बात को ही भूल जाना, ये सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। लेकिन ये जो गुण है स्त्रियों में आना बहुत बहुत कठिन है, उनको भगवद गीता भागवत के श्लोक तो याद नहीं रहते, लेकिन 10 साल पहले उसने इस प्रकार कहा था एग्जैक्टली, कोटेशन के साथ, समय के साथ, टाइम के साथ, परिस्थिति के साथ कोट करके बताएंगे। पता नहीं उस सब चीजें कैसे याद रहता है, भगवद गीता का श्लोक याद नहीं रहता। ये स्वभाव है, खास करके स्त्रियों का स्वभाव है, पुरुषों में भी आ जाता है, लेकिन ये विशेषतः देखा गया है। तो ययाति से प्रेम हुआ, ययाति ने स्वीकार भी किया, भले ही वो धर्म के विरुद्ध है, वो दैव, बड़े बड़े फिलासफी बता रहे थे देवयानी ययाति को कि ये दैव संयोग से हुआ है। अभी आप ये मत सोचो कि मैं ब्राह्मण की कन्या हूं, ये मत सोचिए कि मैं, हम दोनों का विवाह कैसे हो सकता है, ये विधाता का विधान है, इसलिए हमको स्वीकार करना उचित है करके फिलासफी बता रही थी, दर्शन शास्त्र बता रही थी और नम्र निवेदन कर रही थी। ये सब कुछ करने के बाद भी उनका बड़ा भाग्य से ययाति को राजा के रूप में उन्होंने प्राप्त किया, करने के बाद भी ठीक है, शर्मिष्ठा ही यही, ये जो मुझे ययाति को पति के रूप में प्राप्त करने के पीछे किसके हाथ है, शर्मिष्ठा का हाथ है। ये आध्यात्मिक वाद इस प्रकार सोचता है, भले ही उसने मुझे डांटा, उसने मुझे कुएं में फेंक दिया, लेकिन उसी की वजह से तो मुझे याद एक पति के रूप में प्राप्त हुआ। ये बात को देवयानी भूल गई, लेकिन उनका विचार क्या था, अच्छा देवयानी ने मुझे इंसल्ट किया, मुझे एक कौवा बोला, मुझे ही नहीं पूरा ब्राह्मण कुल को उन्होंने कौवा बोला, मेरे पिताजी को उन्होंने कौवा बोला, चलो अभी उनका बदला लेना है। बदला लेने का तरीका क्या है, चलो मैं जाती हूं किसके पास, पिताजी के पास, क्योंकि देवयानी को मालूम में उनके पिताजी शुक्राचार्य साधारण व्यक्ति नहीं है, उनकी पिताजी के जो शक्ति है वो जानती हैं, तो उनकी पिताजी का शक्ति उनको प्रकाशित करने के लिए इस श्लोक में क्या कहा गया है, धूर्मना भगवान काव्य, वो जाके कही आपकी पिताजी को, शर्मिष्ठा ने हमको ये कहा, उन्होंने ये पहले नहीं कहा, उसकी बातों में ये नहीं कहा कि मैंने उनको क्या बोला, मैं यही कहा कि शर्मिष्ठा के अंदर बहुत अहंकार आ गई थी, उन्होंने हमको सारे ब्राह्मण कुल को और हमको और आपको कौवा बोला। तो ये बात सुन के शुक्राचार्य को दुर्मना, दुर्मना जो शब्द है इसका अर्थ क्या है कि बीइंग वेरी अनहैप्पी, बहुत दुखी हुए। तो शुक्राचार्य का दुख का कारण क्या था, दुख का कारण ये नहीं था कि शर्मिष्ठा ने ब्राह्मण समाज को कौवा बोला, उनका दुख का कारण ये था कि उनकी पुत्री दुखी है। अगर घर में पुत्री दुखी है पिता उससे ज्यादा दुखी हो जाते हैं। यह स्वभाव है। ब्राह्मणों को अगर कोई व्यक्ति निंदा करता है उतना दुख नहीं होता है जितना क्षत्रियों को दुख होता है। ब्राह्मणों का जो सहन शक्ति ज्यादा रहता है, मानसिक स्तर में सहन शक्ति ब्राह्मणों का ज्यादा रहता है, शारीरिक स्तर का दुख जो है वो सहने की शक्ति जो है ब्राह्मणों में कम रहता है। क्षत्रियों में मन की स्तर का दुख को सहन करने की शक्ति बहुत कम रहता है और शारीरिक दुख को सहन करने की शक्ति क्षत्रियों में ज्यादा रहता है। आपको मालूम है परशुराम और कर्ण, कर्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण करके छत्र रूप धारण करके परशुराम के पास जाकर कहा, मैं ब्राह्मण हूं, आप मुझे अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाइए। तो परशुराम ने सिखाया। तब एक दिन परशुराम जी कर्ण के गोद में सर के आराम कर रहे थे, उस समय कर्ण के जो जांघ को एक लीच काटा था तो खून बहुत बहने लगा। तब परशुराम को थोड़ा सा कुछ लग रहा था, कुछ तो है, तो उनको उठ के देखा कि कर्ण जो है ये शारीरिक जो तकलीफ है वो बहुत सहन कर रहा था, बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने सहन किया। तब तुरंत परशुराम ने कहा, ये शारीरिक स्तर की जो कष्ट है, इतना कष्ट को इतना दुख को सहन करने का सामर्थ्य जो है केवल क्षत्रिय में होता है, तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो। लेकिन इधर हम देखते हैं कि दुर्मना शुक्राचार्य एक ब्राह्मण होने के नाते एक भिक्षुक थे, एक अर्चक थे, एक पुजारी थे, एक पुरोहित। तो पुरोहित होने के नाते उनको भिक्षा मांगना पड़ता है, जिसका पुरोहित करते हैं उनके पास जाके भिक्षा मांगना, और जैसे पुरोहित कर्म किया तो तुरंत भिक्षा के रूप में कुछ स्वीकार करना, कुछ मांगना, ये उनका धर्म है। तो उस समय मन को बहुत दुख मिलता है अगर कुछ जितना चाहे उतना नहीं मिलता है, या मिलने के पहले थोड़ा उनको अपमान किया जाता है, क्योंकि देने वाला जो है थोड़ा सा अपमान भाव की देखता है, वो सोचता है कि ठीक है मैं दे रहा हूं ना, इससे तुम जी रहे हो, ऐसी भावना रहता है। तो इनको सहन करना ब्राह्मण का कर्तव्य होता है। तो मन की स्तर में दुख को सहन करना ब्राह्मण का कर्तव्य है। अभी शुक्राचार्य इतने महान ब्राह्मण होने पर भी ये क्या हुआ, दुर्मना, उनको मन को बहुत दुख पहुंचा। तो निश्चित रूप में उनकी पौरोहित्यिक धर्म जो है उसकी वजह से दुख नहीं मिला था। उनको दुख किसके लिए मिला, उनकी पुत्री की वजह से मिला। उनकी पुत्री दुखी है, वो पुत्री दुखी होने के नाते शुक्राचार्य बहुत दुखी हो गए। नहीं, मेरे पुत्री, पिता और पुत्री के बीच में जो आसक्ति स्वभाव तरीके से रहता है, जैसे पिछली क्लास में मैंने बात को कहा, माँ का ज्यादा प्रेम पुत्र के प्रति रहता है और पिता का जो प्रेम है ज्यादा पुत्री के प्रति रहता है। ये कुदरती है, ये स्वाभाविक है। तो शुक्राचार्य के सामने देवयानी आके रोने लगी तो शुक्राचार्य का मन बहुत दुखी हो गया, और उनको मालूम था कि मेरी बेटी जो है उसका गलती है। गलती सबसे पहला है कि झगड़ा जो है या वाद विवाद जो है वो एक हाथ से कभी ताली नहीं बजता, कुछ ना कुछ इनका भी गलत है, शुक्राचार्य को मालूम था। शुक्राचार्य को ये मालूम होने पर भी उन्होंने क्या किया, अपने पुत्री का पक्ष लिया। क्यों पुत्री का पक्ष लिया, क्योंकि ये स्वभाव है, आसक्ति जो है उसकी वजह से एक ब्राह्मण अपना ब्राह्मणत्व के पद से नीचे गिर जाता है। जैसे क्षत्रियों का स्वभाव है पक्षपात करना, इसका पक्ष लेना, इसका पक्ष लेना क्षत्रिय का स्वभाव होता है। इससे पॉलिटिकल पार्टी में हम देखते हैं कि हम इसके पार्टी के, ये पार्टी के, लेकिन ब्राह्मण जो कोई किसी पार्टी का, वो सत्य का पार्टी में रहता है, ही इज ऑन द साइड ऑफ द ट्रूथ। तो इधर शुक्राचार्य को अभी पक्ष लेना पड़ा, उनकी पुत्री का पक्ष लेना पड़ा, क्यों, आसक्ति की वजह से। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, उनको मालूम था शुक्राचार्य को कि शुक्राचार्य डिड नॉट लाइक दिस प्रोफेशन, उनको ये जो वृत्ति पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी अपनी पुत्री के वजह से उनके पास आना पड़ा, राजा के पास जाना पड़ा, पुत्री का पक्ष देना पड़ा। शुक्राचार्य समझा सकते थे पुत्री को, बेटी जो भी हो गया भूल जाओ, लेकिन वो नहीं समझा पाए। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, माता पिता गुरु तभी हो सकते हैं जब उनके बच्चों के प्रति अनासक्ति हो। ये बहुत मुश्किल है बच्चों के प्रति अनासक्ति उत्पन्न करना, इसलिए शास्त्र में ऐसा वर्ण विधान है कि आप जैसे एक पुत्र होता है, 5 साल तक उनको लाड़ प्यार करो और 5 साल के बाद आप गुरुकुल में भेज दो। क्यों? अगर एक बच्चा कुछ गलत करता है, आप बच्चे से प्रेम करते हो इसलिए आप उनको डांट नहीं सकते हो। अगर आप डांटो उल्टा वो डांटेगा, क्योंकि मालूम है मैं डांटूंगा तो पिताजी कुछ करने वाले नहीं है। तो इसलिए माता पिता को बच्चे से 5 साल तक लाड़ प्यार करना है, उसके बाद गुरुकुल भेज देना है, क्योंकि गुरु उनको शिक्षा दे सकते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है वो माता पिता को भी वैराग्य का शिक्षा मिलता है और वो बच्चे को भी खुद अपने पैर के ऊपर खड़े रहने का शिक्षा मिलता है। नहीं तो वो जो बच्चा, वो जो लड़का जो माता पिता के घर में रहता है, वो 20-25 साल होने के बाद भी अपना खुद का कपड़ा साफ करना नहीं आता है, वो निर्भर रहता है। तो वो निश्चित रूप में आगे जाके विवाह करने के बाद भी पत्नी के ऊपर निर्भर रहता है, क्योंकि बचपन में उसको स्वतंत्र रहने की शिक्षा नहीं मिला है। इसलिए ये शास्त्र, ये वैदिक सभ्यता के अनुसार क्या कहा गया है, जैसे बच्चा 5 साल का होता है तो उनको गुरुकुल भेज देना चाहिए। तो जो माता पिता उन बच्चे को फिर भी अपने ऊपर निर्भर करने की प्रवृत्ति में डालते हैं, स्वतंत्रता देते हैं लेकिन उनका सारा काम करते हैं, स्वतंत्रता का देना और स्वतंत्र करने में दोनों अंतर है। तो एक जगह मैं इसके ऊपर प्रवचन दे रहा था गुरुकुल के विषय में, तो उसमें माता पिता बच्चों को स्वतंत्रता देना चाहते हैं या दे रहे हैं लेकिन स्वतंत्र नहीं बना रहे हैं, उसको अपने ऊपर परतंत्र बनाने की प्रवृत्ति दे रहे हैं। तो अभी अब देखिए कि माता पिता क्या करते हैं, बच्चे को ठीक है बेटा ले लो, पैसा ले लो, जाके तुम जो करना करो, ऐसा लगता है कि बहुत प्रेम है लेकिन ये बिगाड़ने की प्रवृत्ति। ऐसा लगता है कि माता पिता देखो उसको बंधन में नहीं डाल रहे हैं, उनको स्वतंत्रता दे रहे हैं। स्वतंत्रता देने में, स्वतंत्र बनाने में दोनों में अंतर है। जितना माता पिता अपने बच्चे को बंधन में रखते हैं, जो गुरु अपने शिष्य को बंधन में रखता है, उतना वो शिष्य स्वतंत्र होता है। तो स्वतंत्र होने में और स्वतंत्रता मिलने में बहुत अंतर है। अगर मान लो कोई आपको स्वतंत्रता देता है तो स्वतंत्रता देने पर भी आप परतंत्रता पे हो, यानी वो स्वतंत्रता भी किसके ऊपर आधारित है, किसी और के ऊपर आधारित है कि नहीं। तो इसी प्रकार ये शुक्राचार्य ब्राह्मण होने के नाते तो उनको अत्यंत में उनकी जो पुत्री है, पुत्री से प्रेम जरूर करना चाहिए लेकिन पुत्री का बातों को सुन के तुरंत कार्य नहीं करना चाहिए। किस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को देखभाल करना चाहिए, ये वैदिक सभ्यता में हमको प्राप्त होता है। आजकल वैदिक सभ्यता के ऊपर ध्यान नहीं देने की वजह से तो लोग अपना मनमानी कार्य करते हैं, इसलिए परिवार में कोई संतुलन नहीं है, कोई किसी का बात नहीं सुनता है, पूरा समाज में अस्त व्यस्त हुआ है। खासकर के पुत्रियों का देखभाल करने के विषय में शास्त्र ये बात कहता है कि पुत्रियों को पिताजी पुत्र की पुत्री के प्रेम या प्रेम करना स्वभाव है, पुत्री का हर बात सुनना चाहिए लेकिन उसके ऊपर कार्य नहीं करना चाहिए। और पिताजी को कहना चाहिए पुत्री जाओ जो माता कहती है उसका बात सुनो, क्योंकि माँ को मालूम है बेटी का कैसे देखभाल करना चाहिए और पिता को ये कभी मालूम नहीं होता है कि पुत्री को कैसे देखभाल करना चाहिए। केवल उनके प्रति राग रहता है, अफेक्शन रहता है। तो जो राग और अफेक्शन यानी प्रीति वश कोरी कार्य करता है उसका कोई सफलता नहीं होता है। भौतिक स्तर की जो प्रेम है उसके वश कोई कार्य करता है केवल उनको दुखी दुख मिलता है, उल्टा उनको सुख कभी नहीं मिलता है। तो ये वैदिक सभ्यता है। लेकिन शुक्राचार्य इधर उनकी पुत्री का बात सुन के बहुत एकदम दुर्मना हो गए। अभी शुक्राचार्य के पास पुत्री क्यों गई, देवयानी क्यों गई? देवयानी को मालूम था अगर मेरा कार्य को सिद्ध करना है अभी कोई रास्ता नहीं है, मुझे शर्मिष्ठा को दासी बनाना है, शर्मिष्ठा को सबक सिखाना है। उसका रास्ता क्या है? अभी मैं पिताजी का शरण लूंगी, क्योंकि मेरे पिताजी कौन है? भगवान का व्यहा। देवयानी को मालूम है मेरे पिताजी अति शक्तिशाली है। वैसे भगवान शब्द केवल कृष्ण को लागू होता है लेकिन फिर भी ये भगवान शब्द जो है अन्य कोई शक्तिशाली व्यक्ति को भी संबोधित किया जा सकता है। अन्य कोई शक्तिशाली व्यक्ति को संबोधना करने के लिए भगवान शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है। कभी भगवान शिव कहते हैं, भगवान नारद जी, जैसे नारद जी भगवान नहीं है, शिव जी भगवान नहीं है, लेकिन उनको संबोधन किया गया। क्यों? क्योंकि शक्तिशाली होने की वजह से। तो इधर शुक्राचार्य महान शक्तिशाली है, देवयानी को मालूम है, तपस्या की है, ज्ञान में शक्ति है, इतना हद तक कि बृहस्पति के पुत्र भी शुक्राचार्य के पास आके शिक्षा लेने के लिए आते हैं। तो देवयानी देख रही है कि बड़े बड़े विद्वान लोग आके मेरे पिताजी से शिक्षा ग्रहण करते हैं और उन्होंने अनेकों अनेकों महान कार्य किया, मरे हुए लोगों को भी जीवित करने की शक्ति जो है मेरे पिताजी में है, जिसकी वो भगवान है। अभी मैं मेरी पिताजी की जो महत्ता है मैं किसके लिए इस्तेमाल करूंगी, मेरी जो दुश्मनी है शर्मिष्ठा उनको सबक सिखाने के लिए मैं इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, जब भी आपके पास कोई शिकायत लेके आता है, खास करके जो अधिकारी के स्तर में है, तो शिकायत देने वाला जो है वो बड़ा बदमाश है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो शिकायत देके आपकी सत्ता को, आपकी शक्ति को, अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए लगा रहा है। इसलिए जो शिकायत करता है ना, उसका जो मन है वो बहुत निम्न माना गया है। वैदिक सभ्यता के अनुसार जो शिकायत करने वाला व्यक्ति जो होता है वो उसको महान नहीं माना जाता है। जो हर चीज को सहन करने वाला व्यक्ति है वो महान माना जाता है। इसलिए शिकायत से दूर रहिए अगर महान बनना है तो। मान लो कि आपने शिकायत किया तो क्या होता है कि जो जिसके पास जाके आपने शिकायत किया वो क्या करता है, आपका गलत फायदा भी ले सकता है। इसलिए अगर सच में आपको स्वतंत्र रहना है, कभी किसी के पास जाके शिकायत मत, कोई भी चीज का, चाहे मृत्यु भी आ जाए। लेकिन इधर देवयानी आ रही है अपने पिताजी के पास, आके वो बोल रही है, शर्मिष्ठा ने ऐसा कहा, केवल मुझे ही नहीं कहा, आपको भी कहा, सारा ब्राह्मण कुल को कहा, सबको उन्होंने कहा, कौवा कह दिया। तब शुक्राचार्य को इस बात से दुख नहीं हुआ, इस बात से दुख था कि देवयानी बहुत दुखी है। तो देवयानी क्या कर रही है, शुक्राचार्य को अपनी सेवा में लगा रही है, अभी उनके पिताजी को अपनी सेवा में लगा रही है। अब देखिए, दो लड़कियों के बीच में झगड़ा है, अभी कौन फंस गया इसके बीच में, शुक्राचार्य। क्यों? क्योंकि उनकी आसक्ति थी। तो वैदिक सभ्यता में ये आसक्ति हमारा दुख का कारण है, इतना दुख का कारण है, हमको वो चीज करा देती है जो इतना घृणात्मक चीज है, है कि नहीं? शुक्राचार्य कौन है, सारे असुरों के गुरु हैं। इतना हद तक कि हमने पहले श्लोकों में सुना, बृहस्पति का पुत्र भी उनसे शिक्षा लेने के लिए आया था, लेकिन वो बृहस्पति इतना महान स्तर में है, अभी वो किस काम में लग गए, दो लेडीज के बीच में झगड़ा को सुलटाने में लग गए। उनको सीधा बोल सकते, देवयानी को प्रेम से समझा सकते थे, देवयानी तुमने सोचा कि ये याति तुमको प्राप्त हुआ ना पति के रूप में, वो किसकी वजह से प्राप्त हुआ, अगर शर्मिष्ठा तुमको कुएं में नहीं डालती तो ये याति प्राप्त नहीं होती। तो ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, हर जो घटना होती है दैववश ययाति प्राप्त हुआ तो देवयानी को सोचना चाहिए कि दैववश शर्मिष्ठा भी मुझे डांटी, तो उधर दैव नहीं लगा, इधर दैव लग गया। याति का प्राप्ति जो दैववश हुआ और शर्मिष्ठा का जो डांट है वो दैववश नहीं था। तो देखिए, इसको बोलते हैं हाफ हैंड फिलॉसफी। जहां हाफ हैंड फिलॉसफी अर्ध कुकुट न्याय, जो चीज मुझे अच्छा लगता है उसके लिए मैं फिलॉसफी बोलूंगा और जो चीज मुझे अच्छा नहीं लगता है उधर जो है नहीं नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। तो अस्तित्व ने प्रभुपाद जी उपदेशामृत के जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं, बोलते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन वंस एटीट्यूड। एटीट्यूड का अर्थ है दृष्टिकोण। हर घटना को, जीवन में होने वाले प्रत्येक घटना को हम किस दृष्टिकोण से देखते हैं वही हमारे कृष्ण भक्ति है। एक कृष्ण भक्त में भौतिकवादी में अंतर क्या है, कोई अंतर नहीं है, अंतर इसी में है कि किस दृष्टिकोण से हर चीज को देख रहा है, इस जगत को देखने की दृष्टिकोण, प्रत्येक प्रसंग को किस दृष्टिकोण से देखता है उसके ऊपर आधारित है वो भक्त है कि अभक्त है। वेशभूषा धारण करने से कोई भक्त नहीं बनता है, किससे भक्त बनता है, किस दृष्टिकोण से प्रत्येक प्रसंग को देखता है उससे वो भक्त बनता है। हाउ इज ही परसीविंग एटीट्यूड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कृष्ण कॉन्शियसनेस। एटीट्यूड इज एवरीथिंग, प्रभुपाद जी लिखते हैं। अगर आप उपदेशामृत इंट्रोडक्शन खोल के देखेंगे उसके क्या क्या है, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। अभी शर्मिष्ठा और देवयानी के बीच में, देवयानी जो है ययाति को देख के बोले दैववश, क्यों उनको पसंद आ गया है ययाति से विवाह करने का। उनको अभी अपनी काम इच्छा को पूर्ण हो रहा है, अपनी इच्छा पूर्ण हो रहा है तो फिलॉसफी आ गया, बहुत अच्छा हुआ, दैववश हुआ। जब हमको दुख लगा शर्मिष्ठा की बात, वो दैववश नहीं था। अभी शुक्राचार्य आध्यात्मिक ज्ञान में भी भौतिक ज्ञान में बड़े चढ़े हैं, लेकिन पुत्री को ये आध्यात्मिक ज्ञान दे नहीं पाए। यही ज्ञान जो चर्चा हो रहा है, अपनी पुत्री को दे सकते थे शुक्राचार्य, नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? आ सकती, लेकिन वैदिक सभ्यता के अनुसार पुत्री को डांटने का अधिकार जो है मां के पास है। अब देखिए, आप घरों में भी देख सकते हैं, थोड़ा सा वैदिक सभी तो कुछ अलग ही प्रकार का माहौल है, थोड़ा सा वैदिक या गांव में जो माँ जो है उनकी पुत्री को एकदम बिल्कुल कंट्रोल में लगती है। भले ही पुत्री रोए कुछ भी करे, माँ उनको बिल्कुल डांट के फटकार के बिठा के बोलती है ये सही है गलत है, लेकिन पिताजी नहीं बोल सकता है। पिताजी दुखी होकर बैठ जाते बेचारे। लेकिन जब लड़का कुछ गलत करता है वो पिताजी के बड़े वरदान से ये देखा गया है। माँ जो है पिताजी लड़के को प्रेम करती है, बेटा चलो मैं, इसलिए वो लड़का जो है वो माँ के पास जाके प्रेम करता है, वो पिताजी ऐसे माँ समझाती बेटा तुम्हारी अच्छाई के लिए तो पिता है। लेकिन आजकल कुछ और होता है। तो ये स्वभाव है, परिवार में देखा जाता है। लेकिन इससे क्या किया शुक्राचार्य ने, पुत्री का बात सुन के उतना दुर्मना हो गया, दुर्मना भगवान का यहाँ। तो उनने सोचा कि देखो मेरा क्या स्थिति है, अभी ऐसा स्थिति है कि मुझे राजा के पास जाना पड़ रहा है। क्यों जाना पड़ रहा है? मैं उनका पुरोहित ना, पुरोहित होने के नाते मैं राजा के पास जाके शिकायत करूं, मेरी बेटी को आपने बेटी की बेटी ने मुझे ये किया। ये जो है पौरोहित्यम, इसकी पौरोहित का अर्थ है कि कुछ धार्मिक कार्य क्रिया कांड कराना और उससे जो भिक्षा मिलता है उससे जीवन यापन करना। भिक्षा को ग्रहण करना सन्यासी और ब्राह्मण का कर्तव्य बनता है, उनको ये शोभा देता है। ब्राह्मण को अपना जीवन यापन करने के लिए शास्त्र में कहा गया वो भिक्षा मांग सकते हैं, लेकिन कभी वो नौकरी नहीं कर सकते। जैसे वो नौकरी किया वो क्या हुआ, वो शूद्र हो गया। तो वैदिक सभ्यता के अनुसार वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जीवन यापन करने के लिए अनेकों अनेकों चीजों को बताया गया है। आजकल तो जीवन यापन करने के लिए केवल चोरी हो रहा है, चोरी करते जीवन यापन किया जा सकता है। वो जो है जो निम्न जाति के होते हैं वो करते, शूद्र से भी गए गुजरे होते हैं वो चोरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, जो वर्णाश्रम धर्म में भी नहीं आते वो चोरी करते हैं। इसलिए आप देखिए कहीं निम्न जो वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत नहीं है वो केवल चोरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो उससे थोड़ा सा श्रेष्ठ माना गया जीवन यापन करने के लिए, क्या है वो, उससे श्रेष्ठ क्या है, काम करो, नौकरी करो, सेवा करो, और उससे जो तनख्वाह मिलता है यथा उचित मिलता है, ऐसा नहीं कि डिमांड के साथ, नहीं मुझे इतना पगार दो, वो भी चोरी माना जाता है। परिचर्यात्मकम कर्म शुद्र कर्म शुद्र स्वभावजम, परिचर्यात्मकम कर्म, परिचर्यात्मकम का अर्थ क्या है, सेवा करने के जो मिलता है उसे संतुष्ट रहना। मैं गांव में बच्चों में देखा जो शुद्र परिवार में होते हैं वो सेवा करते हैं और जो मिला उससे वो खुश होकर चले जाते हैं। इतना हद तक उनके हाथ में पैसा नहीं मिलता था तो उनको जो भी घर में बनाओ जो मिल दिया जाता है उससे वो लोग खुश हो जाते थे। तो ये शूद्र की प्रवृत्ति है। इससे ऊंचा है कि व्यापार करना, तो वैश्विक प्रवृत्ति है। तो प्रभुपाद ने कहा एटलीस्ट बी ए बिजनेसमैन, ये नौकरी जो है जो नौकरी करता है वो नौकर बन जाता है, है कि नहीं? तो एक लड़का आया बहुत खुश हो गया, प्रभु जी मुझे नौकरी मिला। तो मैंने तुम गलत गलत व्यक्ति के पास आया। मतलब बहुत अच्छा नौकरी मिला। तो मैंने बोला कि जब तुमको नौकरी मिला या किसी को नौकरी मिलता है वो क्या बनता है, तो थोड़ा सा घबरा गया। मैंने मैम प्रश्न का जवाब दो, जब किसी को नौकरी है वो बनता क्या है? मान लो किसी को बहुत अच्छा नौकरी मिलता है वो क्या बनता है? वो अच्छा नौकर बनता है। ऐसा सोचेंगे तो कोई नौकरी करेगा ही नहीं, नौकरी डू नो। इससे अच्छा है जीवन व्यापन करने के लिए क्या है, व्यापार करो। व्यापार करने में झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन नौकरी करने से दूसरे का झूठ को मानना पड़ता है, लेकिन व्यापार करने से खुद झूठ को बोलना पड़ता है। ठीक है, दूसरा का झूठ को मानना जो है उससे अच्छा खुद झूठ बोलो। हर चीज में दोष है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं प्रत्येक प्रवृत्ति जो भी कर्तव्य है कार्य करते हैं उसके अंदर दोष है। उसके ऊपर क्या है, क्षत्रिय बनो। क्षत्रिय का अर्थ क्या है, शासन करो, व्यवस्था करो और कर वसूल करो। उसमें क्या है, आप दूसरों को दंड दे रहे हो, दूसरों को क्षति पहुंचा रहे हो। कोई व्यापारी है, इतना मेहनत करके कमाया, क्षत्रिय बन के है इतना कर दो तो उसको दुख मिलता है, उसके अंदर भी दोष है। तो कर प्राप्त करके और व्यवस्था को संभाल के रक्षा प्रदान करते हुए क्या करो, आप अपना जीवन यापन करो। इससे श्रेष्ठ है ब्राह्मण, भिक्षा मांगो। लेकिन भिक्षा मांगने में भी एक दोष है, क्या है वो दोष, ये है भिक्षा का इंतजार, यानी दूसरा व्यक्ति कब देगा इस प्रकार की भावना रहता है, कितना देगा कब देगा। जैसे हम लोग जब ब्रह्मचारी लोग हम लोग जाते हैं लाइफ शिप करने के लिए, तो दिव्य कार्य है वो अलग बात है, लेकिन भिक्षा जब मांगने जाते हैं तो समय इंतजार रहता है कब भिक्षा मिलेगा और कितना भिक्षा प्राप्त होगा। तो हम लोग जो भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं खुद के लिए नहीं मांगते, भगवान की मंदिर बनाने के लिए हो अन्य कार्य के लिए ये करते हैं, तो उसमें एक दिव्य कार्य है। लेकिन अपने लिए जब ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए जाता है उसमें एक दोष है। तो इधर ये कहा गया पौरोहित्यम विगर्ह्यन्, तो इधर शुक्राचार्य ये पौरोहित्य जो है भिक्षा का वृत्ति है, यानी मैंने आपके लिए कुछ क्रियाकांड किया, कुछ किया, कुछ ब्राह्मणत्व का कार्य किया, इससे उसके बदले में मुझे भिक्षा दीजिए। विगर्ह्यन् का उसको निंदा करने लगे, क्योंकि मैं पुरोहित हूं ना इसलिए मुझे उनके पास जाना पड़ रहा है, अगर मैं उनका पुरोहित नहीं होता तो मैं क्यों जाता उनके पास, मैं उनके पास शिकायत करने क्यों जाता। तो शुक्राचार्य अपने आप को एक पुरोहित के रूप में होने की वजह से अपने आप को या पछता रहे हैं, ये पछता रहे मैं पुरोहित बना क्यों, अगर पुरोहित नहीं होता अच्छा था। तो ब्राह्मण की जो प्रवृत्ति है भिक्षा मांगना, तो भिक्षा मांगना ब्राह्मण की शोभा देता है, लेकिन उससे भी ऊंचा कार्य है। वो ऊंचा कार्य क्या है, कहा गया है सुवन वृत्तिम च कापोतिम, कापोतिम वृत्ति। कापोतिम वृत्ति क्या अर्थ क्या है, जब आप भिक्षा मांगने जाते हो किसके ऊपर निर्भर कर रहे हो, आप एक व्यक्ति का कृपा के ऊपर निर्भर कर रहे हो। लेकिन कापोतिम प्रवृत्ति क्या है, भिक्षा मांगने में नहीं जाना। जब किसान लोग खेत में कार्य करते हैं, खेती कर रहे हैं, वो धान को सब कुछ करके वो चले जाएंगे शाम को, तो शाम के समय खेत में जाना, जहां जहां धान गिरा पड़ा उसको लेना और घर आके पकाना और दिन भर भगवान का भजन करना, इसको कापोतिम प्रवृत्ति कहा गया है या उच्छा वृत्ति कहा गया है। ये कापोतिम वृत्ति से वो ये जो भिक्षा मांगने की वृत्ति से ये वृत्ति श्रेष्ठ माना गया है। क्या क्या वृत्ति है वो, कापोतिम वृत्ति, उससे भी जीवन यापन हो जाता है। जैसे प्रभुपाद लिखते पिजन, खेत में जब किसान होते हैं सब पक्षियां नहीं आते वो टाइम में, क्योंकि डर रहता है उनको। जैसे खेत से किसान चले जाता है सब लोग चले जाते हैं, सब जितने भी कबूतर है पक्षियां वहां के जो भी बच्चा उसको लेके अपना जीवन यापन करते हैं, तो ये कापोतिम प्रवृत्ति है। तो शुक्राचार्य ने कहा अभी बस मुझे ये असुरों का नहीं करना, असुरों का पुरोहित नहीं बनना है, मैं चले जाऊंगा। ऐसा विचार करके शुक्राचार्य उधर से क्या किए, दुहित्रासा ययो पुरात, दुहित्रासा उनकी पुत्री के साथ उनका घर को छोड़ के चले गए। अस्तित्व में वो घर भी किससे मिला था, भिक्षा के रूप में मिला था। शुक्राचार्य को, कहा ये जो घर मैंने लिया ना उसके, इसकी वजह से मुझे इस प्रकार का डांट सुनना पड़ा। शर्मिष्ठा देवयानी यानी मेरी पुत्री को क्यों डांटी? क्योंकि मैंने उनसे भिक्षा लिया। इसने मान लीजिए आपने किसी से अपने लिए भिक्षा लिया ना, निश्चित रूप में वो आपको डांटेगा, कभी ना भी डांटेगा। इसलिए कभी भी अपने लिए भिक्षा नहीं देना चाहिए, खास करके ब्रह्मचारी को। नेवर टेक एनीथिंग फॉर योर सेल्फ, आप लीजिए भगवान के लिए, अगर बाद में कुछ करने जाएगा बोला भगवान को दिया, मैं अपने लिए कुछ नहीं दिया, आपको जाओ। इसलिए नेवर एवर बी ओब्लाइज टू एनी बडी, ये ऑब्लिगेशन को क्या बोलेंगे हिंदी में, कर्ज नहीं, हाँ, किसी का आभारी नहीं बनना। किसी का आभारी बनने से तो क्या होता है, उनसे कभी ना कभी इंसल्ट सुनना पड़ता है। इसको भगवता है भगवान, अनपेक्षा सिद्ध दक्षा उदासीनो गतव्यता, अनपेक्षा मतलब क्या है कि कोई किसी से उपेक्षा नहीं है, वो देगा ये देगा कोई उपेक्षा नहीं, क्योंकि लेने से क्या होगा अपने लिए, तो निश्चित रूप में सुनना पड़ेगा उनका। इसलिए यू बी टोटली अनपेक्षा, अनपेक्ष होना ये भक्त का एक गुण है। तो शुक्राचार्य यही सोच रहे, मैंने उनसे दान दिया है इसलिए वो लोगों के पास इतना हिम्मत बना बोलने के लिए, अगर दान ही नहीं लेता मुझे, मैं अपने लिए कुछ मांगता ही नहीं, उनसे भिक्षा नहीं लेता तो क्या, तो उनको इस प्रकार ही बोलने का अधिकार नहीं था। ऐसे दिखाते हुए दुहित्रा सा ययो पुरात, अगर छोड़ के शुक्राचार्य चले गए। अभी हमने अनेकों अनेकों प्रवृत्तियों के बारे में बताया, तो लास्ट और फाइनल इससे भी बढ़कर है, कापोतिम प्रवृत्ति से भी, या कापोतिम जैसा वृत्ति से भी बढ़कर और एक वृत्ति है, उसको वृत्ति नहीं कहा जाता है अपना जीवन यापन करने के लिए, वो क्या है, वो है अजगर वृत्ति। भगवदगीता में भगवान कहते हैं कि यदृच्छया लाभ संतुष्टो द्वंद्वादी तो विमत्सरः, अजगर वृत्ति क्या है, वो खेत तक भी नहीं जाना है, जो मिला उसे संतुष्ट हो जाना है। वो कैसा है, माधवेंद्रपुरी का उदाहरण दिया गया है। माधवेंद्रपुरी किसी से ना मांगते थे ना कहीं जाके लेते थे, तो बैठे रहते थे, अगर कोई आके देता है तो वो स्वीकार कर लेते। तो गोवर्धन में जब आए, तीन दिन तक उन्होंने कुछ नहीं लिया था, भजन कर रहे थे, तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक लोटे में दूध लेके पहुंचे, तब उसको स्वीकार किया। तो ये जो प्रवृत्ति है इसको अजगर प्रवृत्ति कहा जाता है, यानी अजगर क्या करता है, ऐसे बैठा रहता है, जब तक कोई आहार मुंह में नहीं आता है तब तक वो खुद जाता नहीं, वो ऐसे ही बड़ा रहता है, या पेड़ के ऊपर ऐसे लटका रहता है, नीचे से कोई आए दर गिर जाता है तो उसको स्वाहा कर लेता है, या मुंह खोल के बैठता है, कोई आया तो बंगला में कहावत है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य क्या है, न प्रविष्यन्ति मुखे, ऐसा कुछ एक कहावत है, यानी सिंह जो है ऐसा नहीं कि वो मुंह खोल के बैठा है तो अपने आप आके कोई जानवर मुंह में आता है, वो नहीं आता अपने आप, जानवर कोई मुंह में आता है। इसलिए हमको भी प्रयास करना चाहिए, लेकिन ये कहावत है, लेकिन वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता ये है कि अजगर वो मुंह खोल के बैठता है, दैवश भगवान भेज देते हैं जानवर को, जाओ उसको आहार के रूप में, लेकिन तो ये बात सबसे ऊंचा चीज है, ये सबसे ऊंचा प्रवृत्ति है। ये श्रीधर स्वामी जो भागवत के टीकाकार है, उनके मन में वैराग्य रहने के भाव था, भागवत के ऊपर टीका लिखूं, मैं कब विरक्त हो जाऊं, मैं कब संन्यास लूं, तो सोच रहे थे। तो विवाह भी हो गया था उनका, तो उन्होंने सोचा कि बस विवाह हो गया तो उनको एक गर्भवती होते मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि हर पत्नी को बच्चा सा ही होता है, तो मैं निकल जाऊंगा संन्यास ले लूंगा। गर्भवती हुई तो उन्होंने सोचा कि पत्नी को देखभाल कौन करेगा, जैसे बच्चा पैदा हो जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। और समय के बाद 9 महीने के बाद बच्चा हुआ, छोटा शिशु हुआ, तो श्रीधर स्वामी सोचने लगे, उस समय स्वामी जी नहीं थे, संन्यास नहीं लिए थे, तो ये बच्चा जैसे जन्म लिया तो माँ का मृत्यु हो गया। अभी श्रीधर स्वामी सोचने लगे कैसे, अभी इस बच्चे को कौन देखभाल करेगा, तो तुरंत उनके मन में विचार आएगा ये कब तक चलता रहेगा, मैं आज जाऊंगा कल जाऊंगा ये होने के बाद जाऊंगा, माँ का मृत्यु हो गया बच्चे को एक बाल को कितना साल तक मैं पहुंचाऊं। तो भगवान से प्रार्थना है, भगवान मुझे आप एक संदेश दो, एक आदेश दो, या एक एक संकेत दो कि आप इस बच्चे को देखभाल करेंगे, माँ का मृत्यु हो गया, माँ का लाश पड़ा हुआ है, अभी बस नवजात शिशु है पड़ा हुआ है सामने, तो एक संकेत तो ऐसा भगवान से जैसे प्रार्थना करने लगे तो उन्होंने एक देखा, एक बड़ा छिपकली होता है जिसको चलना भी नहीं होता, वो दीवार के ऊपर था, तो उन्होंने देखा एक मक्खी अपने आप उड़ के वो छिपकली के सामने बैठी और छिपकली ने केवल जिह्वा को बाहर किया और अंदर ले लिया। तो श्रीधर स्वामी ने सोचा जब ये छिपकली बच्चे छिपकली को देखभाल कर सकते हैं, मैं आपकी शरण में जा रहा हूं, क्या ये बच्चे को आप देखभाल नहीं करेंगे? उसी समय उस परिस्थिति को छोड़ के चले गए। तो बच्चा रो रहा है, मां का लाश पड़ा है, चले गए घर से। और श्रीधर स्वामी ने भागवत की कमेंट्री लिखा। सब सोचते हैं प्रभु जी बच्चे का क्या हुआ। बाद में वो राजा बना बच्चा, कैसे? उसी रास्ते में कोई दंपति जा रहे थे मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने के लिए, हे भगवान हमको कोई संतान नहीं है, संतान दो। जब रास्ते से जा रहे थे तो बच्चे का आवाज सुनाई पड़ा, प्रार्थना करके वापस आ रहे थे, वही बच्चे का आवाज सुना, तो अंदर जाके देखे तो मां मरी पड़ी है और बच्चा। तो लोगों ने सोचा भगवान ने ही ये बच्चे हमको दिया करके, वो लिए बच्चे को देखभाल किए, बाद में वो बच्चा राजा बना। तो अपना देखभाल कैसे होगा, उसके लिए अनेकों अनेक वृत्तियां हैं। सबसे पहला चोरी है, दूसरा क्या है, नौकरी है। चोरी से बेटर नौकरी, नौकरी से बेटर क्या है, व्यापार। व्यापार से अच्छा क्या है, कर, कर वसूल करके क्षत्रिय का। बाद में क्या है, भिक्षा, बहुत ही भिक्षा आंदे, उससे बढ़कर क्या है, कापोतिम, उससे बेटर क्या है, अजगर सोते। यदृच्छया लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः, ये बात को याद रखना है भगवत गीता में। तो आगे भी आता है किस प्रकार शुक्राचार्य जैसे घर छोड़ के चले गए, जैसे उनके अंदर वैराग्य आया तो राजा को डर लगा। क्या डर लगा, कहीं ये देवताओं के पास ना चले जाए। अब देखिए इससे क्या पता लगता है कि शुक्राचार्य ने जैसे छोड़ा अपने घर के प्रति आसक्ति, भिक्षा दान प्राप्त करने की, भिक्षा प्राप्त करने की आसक्ति, पौरोहित के प्रति आसक्ति, जैसे उन्होंने छोड़ा राजा शरण लिया, यानी शुक्राचार्य शक्तिशाली बन गए। यानी शक्ति किसमें है, भौतिक चीजों को संग्रह करने में नहीं है, किसमें है, छोड़। शुक्राचार्य ने गैस जैसे घर छोड़ा तो राजा शुक्राचार्य का शरण लेता है, आके सीधा आके वो गिर पड़ा, नहीं नहीं मत जाइए आप, तो किसमें है शक्ति बताइए, वैराग्य में शक्ति है, आसक्ति में कमजोरी है। तो आसक्ति जो है कमजोरी है, वैराग्य है कि नहीं, अवैराग्य में सुख है, चीजों को ग्रहण करने में दुख है। मान लीजिए आपने ज्यादा खा लिया तो क्या होगा, और जो खाया चीज को आपने इसको त्याग दिया तो विरक्ति में सुख है, और विरक्ति ही या वैराग्य ही इसके अंदर ही शक्ति है। ठीक है, तो ये सब बातें इस श्लोक से हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? बिल्कुल। हाँ, इनका प्रश्न है कि किसी तरीके से कंप्लेंट नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा बताइए। आप ये कोई आके दुख देता है या कुछ अपने लिए कुछ कमी है उसके विषय में कोई कंप्लेन नहीं करना चाहिए, या कोई समाज कल्याण के लिए या दूसरों के हित के लिए अगर कोई अच्छाई के लिए आप किसी के पास जाके बता सकते हो ये चीजें ऐसा है तो वो कंप्लेंट नहीं माना जाता है उसको। कंप्लेंट का अर्थ क्या है कि उसने मुझे ऐसा कहा, इसने ऐसा मेरे साथ किया तो मुझे इंसाफी चाहिए, इसको कंप्लेंट कहा जाता है। और जो भी अधिकारी सर में है वो चाहते हैं कि आके कंप्लेंट करें मुझे, ताकि दोनों को कंट्रोल कर सके, सब लोग बैठे कंप्लेंट करो, प्लीज कंप्लेंट, ताकि जिसने कंप्लेंट किया, जिसके ऊपर कंप्लेंट किया, दोनों को वो कंट्रोल कर सके। इसलिए डो नेवर कंप्लेन एट लीस्ट फॉर यूर सेल्फ। थ्योरी फ्लेवरी बिजनेस उसके बाद टैक्स कलेक्टिंग बीइंग ए किंग और उसके बाद बेगिंग एंड देन बीइंग लाइक ए पिजन सो व्हाट एवर इज लेफ्ट ओवर कलेक्टेड एंड अल्टीमेटली जस्ट वेट व्हेन कृष्णा गिव यू एक्सेप्ट व्हेन कृष्णा डजंट गिव नो प्रॉब्लम। बराबर ये वास्तविक विरक्ति नहीं है, बाद में पता लगता है जैसे उनका पैर पड़ा राजा आके फिर वापस उसी घर में गया। स्त्री का कंप्लेंट सुनने से आप भी स्त्री बन जाते हो। कितने लोग स्त्री का क्या बोलती हैं, बस अभी आज घर छोड़ के चले जाऊंगे, जाते हैं वापस, है कि नहीं। तो देवयानी का कंप्लेंट सुन के शुक्राचार्य भी नहीं भैया ये सब छोड़ चलो, जैसे राजा पैर पड़ा तुरंत आगे वापस उसी घर में। एस्पेशली नेवर एवर लिसन टू एनी लेडीज कंप्लेंट। शुक्राचार्य ने गलती कर दिया। किसी का भी कंप्लेंट नहीं, कंप्लेंट करना जो है वो इट इज नॉट ए वेरी, वो ना कंप्लेंट सुनने वाला को शोभा देता है ना कंप्लेंट करने वाला को शोभा देता है। जैसे जब भी वरिष्ठ लोग आते हैं उनके पास जब कंप्लेंट करते हैं तो क्या बोल रहे हैं बोलो चलो, वो देखते क्या बोल रहे हैं, जप नहीं कर सकते, वाई डू स्टैंड हरे की स्टैंड बी हैप्पी, इतने सारे कंप्लेंट लेके आ रहा है। ठीक है टाइम इज ओवर। संतरा श्रीमद भागवतम की श्रील प्रभुपाद की चाहिए।